Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Adi Guru Bhagwan, Sarvajna Shankaracharya Ji Dwara Virachit, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर विचार चल रहा है। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राण्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम्। जागृत अवस्था में हमें जो विश्व, जो पदार्थ, जो प्रपंच अनुभव में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, इसकी वास्तविकता कैसी है, तो आचार्य शंकर बताते हैं दर्पण में दिखे हुए दृश्य की तरह है। दर्पण में दिखने वाले दृश्य को हम दो तरह से मानते हैं। जब तक अपने ललाट की बिंदिया ठीक करनी होती है तब तक तो वह सत्य की तरह देखते हैं। जब तक अपने केस को ठीक करना होता है तब तक तो हम उसको भी सत्य की तरह ही देखते हैं, मानते हैं। जब तक अपने कमीज के कलर ठीक करनी होती है, कॉलर बोलते हैं ना, ठीक है कि नहीं, तो तब तक उस दर्पण में देखने वाले दृश्य को भी सत्य ही मानते हैं। या जब तक अपने सफेद बाल को काले करनी होती है तब तक भी हम सत्य ही मानते हैं कि नहीं। आप लोगों में से बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हो, सबके सफेद दिख रही है तो उसको सत्य ही मानते हैं। वो जो कहता है वो हम उसी को मान लेते हैं। दर्पण जो कहता है, जो दिखा रहा है, उसको सत्य मान रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर हम उसकी परवाह नहीं करते, फिर हम चले जाते हैं, हम हट जाते हैं वहां से। हमारे हटने के बाद उसका क्या होगा? जब चाय पीने लगते हैं तो एक कप उसके लिए अतिरिक्त बनाकर रखते नहीं हैं, रखते हैं जब भोजन करनी होती है तो उसके लिए एक कटोरी रस, आम का रस अलग नहीं रखते, उसके लिए अलग थाली तैयार नहीं करते। जब बाजार से कपड़ा खरीद के लाने होता है तो उसके लिए अलग साड़ी नहीं खरीदते हैं, उसके लिए अलग वस्त्र नहीं खरीदते हैं। उसका क्या होगा? तो कहते हैं कि अरे वो है ही नहीं तो उसके लिए क्या भोजन रखनी है, अलग थाली क्यों बनानी है, वो है ही नहीं तो उसके लिए अलग कपड़ा क्या करना है। हम खा लेंगे तो उसको हो जाएगा, हम पहन लेंगे तो उसको हो जाएगा। तो दो तरह से देखते हैं हम दर्पण के दृश्य को, एक तो कहीं सत्य की तरह देख लेते हैं और कहीं झूठे की तरह देखते हैं। शंकराचार्य जी की मान्यता है, शंकराचार्य जी का कहना है, वास्तव में ये पदार्थ दर्पण में दृश्यमान नगर के पदार्थ के समान है। सारा विश्व इसको सत्य मान लेना ही सबसे बड़ी जीव की भूल है। दिखना ही नहीं चाहिए ये अर्थ नहीं है, दिखने पर भी उसको सत्य मानना कि नहीं मानना ये आप पर निर्भर करता है। दिखता है कि नहीं दिखता है ये आप पर निर्भर नहीं करेगा, आप नहीं चाहोगे तो भी दिखेगा। आप दर्पण के आगे खड़े हो जाओगे और आपके आंख ठीक है, वो वस्तुतंत्र नहीं है, कर्तृतंत्र नहीं है, वो वस्तुतंत्र है, वेदांत का सिद्धांत है। कर्म आदि सब, स्वर्ग आदि ये कर्तृतंत्र है, करोगे तभी प्राप्त होगा, लेकिन ये वस्तु ज्ञान जो है वह कर्तृतंत्र तंत्र नहीं है, वो वस्तु तंत्र है। प्रकाश हो और आंख ठीक हो और सामने दर्पण खड़ा हो, आप लाख कोशिश करें कि मैं उसको नहीं देखूंगा तो ये नहीं होगा, दिख तो रहेगा, दिखेगा तो सही। आप कहें कि ये जगत को मैं देखूंगा ही नहीं, ये नहीं होगा, दिखेगा तो सही। या तो आंख बंद कर लो हमेशा, या अंधकार में बैठे रहो हमेशा, नहीं तो आंख ठीक है और प्रकाश भी है तो दिखेगा। लेकिन दिखने पर किस रूप में दिखता है वो आप पर निर्भर करता है। उसको यथार्थ के रूप में देखना चाहते हो कि अयथार्थ के रूप में देखना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है। दिखने वाले दृश्य को सत्य के रूप में आप देखना चाहो तो देख लो, सत्य के रूप में देख लो, लेकिन एक बात ख्याल रख लेना, आपकी चाहना मात्रा से वो सत्य नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा कि ये सत्य है, लेकिन आपको लगने मात्रा से वह सत्य नहीं होता। नहीं तो बहुत आसान था, संसार में धनी होना बहुत आसान था, क्योंकि नदी के किनारे, समुद्र के किनारे खड़े हो जाते और सबके सीपी के चांदी को आप सत्य मान लेते तो आपके सत्य मानने पर सबके सबको सत्य मानना पड़ता, तब तो फिर आपको धन कमाना कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आपके सत्य मानते ही फिर सब सत्य मान लेंगे तो फिर समुद्र के किनारे सीपी भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सभी सत्य मानने लग जाएंगे तो फिर कौन छोड़ेगा उसको है? केवल आपको सत्य लग रहा है और सत्य नहीं मानते, इसलिए आपके लिए बचा रहता है। जैसे आपको सत्य लगा वैसे और को भी सत्य लग जाएगा तो कहां बचेगा समुद्र के किनारे सीपी, बचेगी? सभी उसको उठाते ले जाएंगे, किनारे में आ गया कि उठा लिया। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, निजांतरगतम, कहां दिख रहा है ये जगत, है कहां? है तो निजांतरगत, तुम्हारे अंदर ही है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी सत्ता से भिन्न सत्ता नहीं है, तुम्हारी अंदर है का मतलब ये नहीं समझ लेना कि जैसे हॉल के अंदर हम अलग हैं, स्वतंत्र हैं, हम बैठें चाहे उठें, चाहे कथा सुने चाहे कुर्सी में सो जाएं, हम स्वतंत्र हैं, हैं कि नहीं बोलो। यहां बैठने वाले सभी को कथा सुनना अनिवार्य है कि सोने के लिए भी स्वतंत्र है वो, है? निद्रा लग जाए तो सो भी सकता है कि नहीं बोलो, स्वतंत्र है। कोई कानून तो है ही नहीं कि हॉल में कुर्सी में बैठने के बाद सोना नहीं, ऐसा तो नियम तो है ही नहीं। और नियम भी बना देंगे तो वह नियम वहां दरवाजे में लटका रहेगा, नियम अपना सोने का काम सोते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, निजांतर गत का अर्थ होता है कि अपनी सत्ता से स्वतंत्र सत्ता वाले ये पदार्थ है नहीं। दर्पण की सत्ता से दर्पण के अंदर दिखने वाला जो दृश्य है वह स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है। यदि स्वतंत्र सत्ता वाला होता तो फिर दर्पण के नष्ट होने पर भी उसमें कोई भी विकार ना आता। दर्पण के हटने के बाद, दर्पण के टूटने के बाद भी वह यथावत बना रहता, स्वतंत्र सत्ता वाला होता तो। निजांतरगतम अपने अंदर विद्यमान है। लेकिन हमको तो सब ये लग रहा है कि ये तो सब हमसे बाहर है, हमसे बाहर है। किसी को भी ये नहीं लग रहा है कि ये सब हमारे अंदर है। ना आपको लग रहा है ना मुझे लग रहा है, मुझे भी नहीं लग रहा है। मैं कह तो रहा हूं शंकराचार्य जी की भाषा को, मुझे नहीं लग रहा है कि आप सब मेरे अंदर हो। लगने की बात जहां तक है, विचार से सिद्ध होता है कि आप मेरे अंदर हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है कि आप मेरे अंदर हैं। विचार से सिद्ध होता है कि आप मेरे अंदर हैं, क्योंकि आपकी सत्ता केवल मेरी दृष्टि और मेरी सत्ता पर निर्भर है। आप यहां हो कि नहीं, आप मेरे से बाहर हो कि नहीं, आप कुर्सियों में बैठे हो कि नहीं, या आप स्वतंत्र नहीं है, वो मेरी सत्ता पर निर्भर है। मैं आंख बंद कर दूं तो क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे बोलो? मैं आंख बंद कर दूं तो क्या कर लोगे? तुम्हारी सत्ता कुर्सी में सिद्ध होगी? मैं गहरी निद्रा में चला जाऊंगा, बोलो, मैं गहरी निद्रा में, डीप स्लीप में चला जाऊंगा तो तुम्हारी सत्ता कुर्सी में सिद्ध होगी? है? तुम हो यही मुझे भान नहीं होगा तो कैसे सिद्ध करूंगा कि कुर्सी में हो? यही तो बात है। शुतुरमुर्ग को लगता है, कहते हैं कि जब उसको कोई डर लगता है तो वह बालू में, रेत में सिर छुपा लेती। कहते हैं बिल्ली को जब दूध पीनी होती है तो आंख बंद कर लेती है। बिल्ली से पूछा कि भाई दूध पीते समय आंख बंद क्यों करती हो? उसने कहा डर लगता है, आंख खोलूं तो डर लगता है। सो कैसे? क्योंकि मैं आंख खोलूं तो सामने और कोई दिखाई पड़ेगा, और कोई और होगा तो वो मुझे मारेगा, वो देख लेगा कि मैं दूध पी रही हूं। आपने आंख बंद कर दिया तो सामने कोई भी दिखेगा नहीं, कोई भी नहीं दिखेगा तो कोई मारने वाला ही नहीं है, तो आपने निश्चिंत दूध पी लो। आप भी दूध पीना हो तो आंख बंद करके पी लेना, निश्चिंत होगा। तो आप देखते हो तभी बाहर दिखाई पड़ता है, आप न देखो आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये बात सिद्धांत तक ही, ये प्रयोग में आना बड़ा मुश्किल है, प्रयोग में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा ये अभ्यास हुआ है और इस अभ्यास के चलते ऐसा अध्यास हुआ है कि हमने कभी भी ये पक्ष को सोचा ही नहीं है कि पदार्थों को बाहर न देखकर अंदर देखें, ये कभी सोचा ही नहीं है, कभी अभ्यास किया ही नहीं है। तो फिर हम हमेशा बाहर देखते आए हैं, तो वही आदत है, वही अभ्यास है। उस अभ्यास के चलते ये अध्यास इतना दृढ़ हो गया है कि हमको बाहर के अलावा अंदर पदार्थ दिखता ही नहीं है। दृष्टांत दिया उन्होंने, स्वप्ने स्वंतर्गतम विश्वम यथा पृथक इवेक्षते पश्यन्नात्मया मायया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया। दृष्टांत दिया था, यथा निद्रया बहिरुद्भूतम इव पश्यन्, जैसे स्वप्नावस्था में अंदर ही अपनी सत्ता और अपने प्रकाश से भिन्न अभिन्न हुए हुए पदार्थों को, अपने ही अंदर विद्यमान तमाम पदार्थों को स्वप्न दृष्टा पुरुष बाहर की तरह देखता है। लेकिन स्वप्न में दिखाई दिए हुए, दिखाई पड़ने वाले वो सभी पदार्थ वास्तव में निजांतर है। जैसे स्वप्न के सारे दृश्य निज अंतर्गत है, अपने ही अंदर विद्यमान है, अपनी सत्ता और अपनी प्रकाश से भिन्न प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, अपनी सत्ता से भिन्न सत्ता वाले नहीं होते। आपको अभी तो यह लग रहा है कि कुर्सी की सत्ता मेरी सत्ता से भिन्न सत्ता है, आपको अभी तो यह लग रहा है मैं भिन्न हूं, कुर्सी भिन्न है, कुर्सी स्वतंत्र सत्ता वाली है, मैं यहां से निकल जाने पर भी कुर्सी यहीं के यहीं रहती है, और जब मैं बाहर से आ रहा था तो कुर्सी यहीं थी, कल भी यहीं छोड़ के गया था और आज भी यहीं है, और मैं कहां से कहां पहुंचकर आ गया। इसका मतलब यह है कि यदि मेरी सत्ता से कुर्सी की सत्ता भिन्न न होती, अभिन्न होती, तो मैं जहां जाता कुर्सी वहीं पीछे लग कर जाती, मनमोहन की तरह है, शायद उसी की कुर्सी पीछे लग कर जाती और किसी की नहीं जाती है। स्वतंत्र सत्ता, हमको ऐसा नहीं लगता कि अभी कुर्सी की सत्ता और मेरी सत्ता एक ही है, और हमको ये नहीं लगता है कि ये कुर्सी को देखने वाला मैं अलग हूं और दूसरा अलग है, इसको प्रकाशित करने वाला सूर्य का प्रकाश अलग है, देखने वाला मैं अलग हूं, कुर्सी की सत्ता अलग है, अलग अलग। लेकिन दृष्टांत दिया, आपको ये जागृत में जो कुछ भी हो रहा है ये भ्रांति से हो रहा है, सत्य क्या है? तो जैसे स्वप्न की कुर्सी और आपकी सत्ता, कुर्सी की सत्ता और आपकी सत्ता दोनों अलग अलग है कि नहीं? स्वप्न की कुर्सी की सत्ता और आपकी सत्ता दोनों सत्ता अलग अलग है कि नहीं? ऐसा होगा कि आप जागृत में आ जाएं और कुर्सी की सत्ता स्वप्न में ही रह जाए, स्वप्न की कुर्सी की सत्ता वो स्वप्न में सुरक्षित रह जाए, संभव है? हैं? आप जागृत में आ जाएं या आप सुसुप्ति में चला जाएं, तब स्वप्न की कुर्सी की सत्ता स्थावत यथावत रहेगी वहां? इसका मतलब यही सिद्ध हुआ कि आपकी सत्ता और कुर्सी की सत्ता भिन्न नहीं है। और आप कहोगे कि भिन्न नहीं है, एक ही है, तो फिर सुसुप्ति में भी कुर्सी दिखनी चाहिए, क्योंकि मैं सुसुप्ति में गया तो कुर्सी भी वहीं जानी चाहिए, मेरी सत्ता जहां है कुर्सी की सत्ता वहीं है, दोनों की सत्ता एक ही है, तो सुसुप्ति में भी कुर्सी जानी चाहिए, सुसुप्ति में तो नहीं जाती, और जागृत में आते ही तो कुर्सी की सत्ता, फिर स्वप्न की कुर्सी की सत्ता जागृत में भी आनी चाहिए, तो फिर जागृत में नहीं आती है, तो मेरी सत्ता और स्वप्न की कुर्सी की सत्ता दोनों को अलग अलग कैसे माने? एक ही माने, एक ही मानते हैं तो फिर अनुभव में क्यों नहीं आता है? तो ये अनिर्वचनीय है, वेदांत यहीं जाकर अनिर्वचनीय कहता है। ये जागृत की सत्ता भी ठीक इसी तरह है। दूसरी बात, स्वप्न में उस कुर्सी को प्रकाशित करने वाला प्रकाश और आप, ये दोनों एक ही है। मैं हूं जो बोध वहां हो रहा है, वही आपका प्रकाश ही, ये कुर्सी है ये बोध करा रहा है, कुर्सी को प्रकाशित करने वाला प्रकाश और आपके प्रकाश ये दो नहीं है, इसीलिए प्रकाश और सत्ता स्वप्न की दोनों एक ही है। स्वप्ने स्वांतर्गतम विश्वम यथा पृथक इवेक्षते, अंतर्गतम विश्वम यथा पृथक इव एक्षते, स्वप्न दृष्टा अपने से भिन्न की तरह देखता है ठीक उसी तरह, तथा इव जागृत काले भी प्रपंचोयम विविच्यताम, इसी तरह जागृत का ये प्रपंच भी आपके अंदर ही है, ये विचार कर लेना। विविच्यताम, ये विचार किए बिना ये अनुभव में नहीं आएगा, बिना विचारे यदि इसको अपने अंदर देखना चाहो तो वो संभव नहीं होगा। विचार करोगे तब आपकी सत्ता और आपके प्रकाश से अभिन्न सिद्ध हो जाएगा। स्वप्ने स्वसत्ते वार्थानां सत्ता नान्येति निश्चिता, को जागृति विशेषस्ति जड़ानां आसुनासिना। जागृत के पदार्थ जड़ होने के कारण स्वयं प्रकाशित तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ पदार्थ में प्रकाशता नहीं है, और मैं अपने आप को जड़ मान नहीं सकता, क्योंकि किसी भी हालत में भी अपने को जड़ नहीं मान सकता। अतः मैं चैतन्य रूप हूं और जो चैतन्यता है उसी में ही प्रकाशता है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वह दूसरे को भी प्रकाशित कर सकता है और स्वयं भी प्रकाशित हो सकता है। जागृत के तमाम पदार्थ जड़ होने के कारण ये जड़ पदार्थ न ये दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं न खुद प्रकाशित हो सकते हैं। आपका पेन यदि खो जाए तो उसको संबोधन करो, हे पेन मास्टर तू कहां है, तो शायद वो बता पाएगा कि मैं यहां पर हूं। बता पाएगा है? हे पेनी राम है? तू कहां है, तो वो बता नहीं पाएगा कि मैं कहां हूं। और उसके साथ अच्छा भाई तेरे साथ और कौन कौन है, वो भी नहीं बता पाएगा कि मेरे साथ और कौन कौन है, ना मेरे साथ और कौन कौन है ये बता पाएगा, ना ये बता पाएगा कि मैं कहां पर हूं, किस अवस्था में हूं। ऐसी अवस्था क्यों है, तो क्योंकि वो जड़ है। जड़ वस्तु में न तो वह अन्य को प्रकाशित करने की क्षमता है, न खुद प्रकाशित होने की क्षमता है। स्वप्ने स्वसत्ते वार्थानम सत्ता नान्येति निश्चिता, को जागृति विशेषो अस्ति जड़ानम आसुनासिनाम, क्योंकि वही पदार्थ स्वप्न में भी वह सूक्ष्म संस्कारवान जो पदार्थ हैं वह जड़ का संस्कार जड़ ही होगा, तो तुम्हारे प्रकाश के बिना स्वप्न के पदार्थ प्रकाशित नहीं होते, इसी तरह जागृत के ये पदार्थ भी तुम्हारे प्रकाश के बिना प्रकाशित नहीं होंगे। तुम देखोगे कि ये कलम यहां पर है तभी वो प्रकाशित होगा, अन्यथा प्रकाशित नहीं होगा। तुम्हारे प्रकाश से पेन प्रकाशित होता है, अन्यथा पेन प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि जड़ है। आसुनासिनाम, और दूसरी बात यह है कि जड़ पदार्थ जागृत के पदार्थ इतने अनित्य हैं, इतने अनित्य हैं, तो इनकी खुद की सत्ता है यह तो कोई मूर्ख भी कल्पना नहीं कर सकता। जागृत के दिखे हुए पदार्थ इतने अनित्य हैं, आसुनासी हैं, दृष्ट नष्ट हैं। जब आसुनासी हैं, दृष्ट नष्ट हैं, तो फिर कैसे ये कल्पना करते हो कि ये पदार्थ खुद अपनी सत्ता में टिके हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इनको टिकाने वाला कोई और सत्ता है जिसकी सत्ता से ये कुछ टिके हुए हैं, कुछ टिके हुए हैं ना, वो भी पूर्ण टिकाऊ तो इनकी नहीं है। दूसरे की सत्ता से टिकने पर भी यह पूर्ण इनकी स्थिरता नहीं है, अनित्यता सिद्ध है। तो सत्ता भी तुम्हारी है और प्रकाश भी तुम्हारी है। को जागृति विशेषो अस्ति जड़ानाम आसुनाशिनाम। सुरेश्वराचार्य जी श्लोक इस मूल श्लोक की व्याख्या करते हैं। स्वप्ने प्रकाशो भावानाम सो प्रकाशान नहीं तर जागृत्यपि तथे वेति निश्चिन्वन्ति विपश्चितः। विपश्चित विचार करने वाले व्यक्ति को विचार के माध्यम से यह निश्चय करना चाहिए। ये बिना विचारे निश्चय नहीं होगा, दूसरे के कह देने मात्र से आपको निश्चय नहीं बन पाएगा, आपको खुद विचार करना पड़ेगा तभी जाकर आप निश्चय कर पाओगे। कोई दूसरा कह देगा कि ये जगत का पदार्थ स्वप्न की तरह है, ये कह देने मात्र से निश्चय नहीं होगा। खूब बैठकर खूब गंभीरता से युक्तियों से प्रमाणों से आचार्य वचनों से आप जब खुद विचार करने लगोगे तब धीरे धीरे आपको यही बोध होने लगेगा कि हाँ ठीक कह रहे हैं, श्रुति जो कह रही है ठीक कह रही है, आचार्य जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा है। तब जाकर विपश्चित विद्वानों को विचारवान पुरुषों को ही यह निश्चय होगा कि जागृत का पदार्थ भी स्वप्न की पदार्थ की तरह ही है, उससे भिन्न इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तब जाकर निश्चय होगा। निद्रया दर्शिता नर्थान न पश्यति यथोत्थितः। उसी बात को और स्पष्ट करते हैं। निद्रया दर्शितान अर्थान, निद्रा यानी स्वप्न रूपी निमित्त से दिखाई देने वाले स्वाप्निक पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ वस्तुएं, न पश्यति यथोत्थितान, जगने के बाद स्वप्न में जो पदार्थ जिस रूप में दिखाई पड़ रहे थे वो पदार्थ जगने के बाद उस रूप में दिखाई नहीं पड़ते। स्वप्न में सूर्य दिखाई पड़ रहा था, अब रात्रि का समय है, पदार्थ इतने विरोधाभासी हैं। स्वप्न में आपको सूर्य दिखाई पड़ रहा था और यदि आप स्वप्न में जग गए, किसी निमित्त से जग गए, कई बार ऐसा होता है, स्वप्न देख रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, गर्मी है, इतना गर्मी है कि एकदम शरीर से पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, और आप छटपटा रहे हैं कि बेचैन हो रहे हैं कि कहीं छाया मिल जाए, शीतल पानी मिल जाए, तो कहीं छाया भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिल रहा था, आप छटपटा रहे थे। उसी समय में किसी कारण से, कई बार ऐसा होता है स्वप्न के दृश्यों से स्थूल शरीर में भी क्रिया होती है, जबकि नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वप्न के दृश्य का सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध है और सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संबंध होने के कारण तत्संबंध के द्वारा स्थूल शरीर में क्रिया दिखने लग जाता है। कई बार स्वप्न देखने वाला व्यक्ति स्वप्न में संवाद करता है, किसी से बोलता है, तो यूं तो सामान्यतया स्वप्न में वो क्या बोल रहा है जागृत को पता नहीं चलने वाला है, भैखरी के रूप में परिणत नहीं होगा वो,